ओम शांति। पहले तो हमें अपने को सर्वात्माओं के लिए प्यार से भरना होता है, न केवल आत्माएं बल्कि प्रकृति से भी हमारा बहुत प्यार हो। प्रकृति से प्यार नहीं रहा तो आप प्रकृति का रूप देख रहे हैं। वैज्ञानिक ही कहते थे, 5-7 साल पहले तो एक बड़ा लेख हमने पढ़ा, प्रकृति कुपित हो रही है, किसी भी दिन उसका क्रोध बाहर निकल सकता है। अभी आपने नॉर्थ इंडिया में देखा होगा, सुना होगा, कोई आए हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत अच्छा देखा ना, कैसे प्रकृति कुपित हुई। छोटे सीन आ रहे हैं, प्लेन्स में गड़बड़ हो रही है, रोज समाचार आते रहते हैं, फलाने प्लेन को यहीं लैंडिंग करा दी, फलाने का पहिया निकल गया, पहिया जो सब चेकअप होके चालू होता है वो निकल गया। एक का तो अभी हुआ, कौन से एयरपोर्ट पे थे मुझे याद नहीं है, बस उड़ने ही वाला था, टेक ऑफ कहते हैं, और इंजन फेल हो गया। वो तो पायलट की बहुत बड़ी बहादुरी और विवेकशीलता, क्योंकि जब वो उठता है तो कम से कम 250 किलोमीटर की स्पीड होती है, फिर भी उसने कंट्रोल कर लिया, वहीं सब बच गए। एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाया, टक्कर तो हुई लोगों की आगे पीछे, पर बच गए। ये सब समय की चेतावनियां हैं। हमें अपने को स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत भरना है। अब समय की डिमांड वही है। परमात्म प्यार भी कोई आत्मा तभी प्राप्त करती है जब उसका चित्त सर्वात्माओं के लिए प्यार से भरा हो। आपने सुनी होंगी बाबा की कुछ बातें, मैं रिपीट कर देता हूं। जो बच्चे दूसरों को बहुत सुख देते हैं, बाबा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। गुह्य फिलोसॉफी की एक बात है, जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही परमात्म प्यारे बनते हैं। बहुत जरूरी है। अब एक बात पे वर्क करेंगे, अब समझते तो समय पर वर्क करना है। हमें अपने चित्त को निर्मल बनाना है। अपना जो एक बिलीफ हम लेकर चलते हैं, जो हमारे कंसेप्शंस, हमारे विचार, आइडियाज हम बना लेते हैं, उसको चेक करें वो ठीक है या नहीं, वो कहीं गलत तो नहीं बना लिया हमने। मैं उदाहरण भी दूंगा। एक जगह सेंटर में हम गए, एक पुराना कुमार, पुराना माना 50 साल का, उसकी स्थिति अब तक अच्छी नहीं बन पाई। मेरे से शुरू से ही मिलता आता था, उसकी प्योरिटी में समस्या होती थी तो आता था, सेंटर में समस्या होती थी तो आता था। बहन जी ने बताया इसकी सब इसमें अच्छा है, तन मन धन सब अर्पित कर दिया, लेकिन एक कमी है। वो बहन ऐसा क्यों कर रही है, वो बहन ऐसा क्यों कर रही है, इसमें उसकी सारी एनर्जी नष्ट होती है। देखिए, मनुष्य को दिखता तो है ये ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को सुधारने के चक्कर में कहीं हम खुद न स्थिति को बिगाड़ लें, बहुत ध्यान देना इस पर। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया करता हूं, शायद पिछले साल का ही है। एक भाई समर्पित होने आया, 8 मास रहा, जब आया मुझे बताया था मैं सेवा में आया हूं, अच्छा लगा तो समर्पित हो जाऊंगा। जाने लगा, मिलने आया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, कहा मैंने सब कुछ देख लिया। समझ गए ना, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। मैंने बहुत अच्छा, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, आपके पास इतनी अच्छी बुद्धि है, सब कुछ देख लिया आपने, पर एक चीज छूट गई आपसे, उसको पता नहीं था मैं क्या कहूंगा। क्या छूट गया? मैं तो सब देख लिया, अपने को देखना भूल गए। अब वो बेचारा चुप हो गया, अंतर्मुखी हो गया कि तो सोचा ही नहीं था। हम अपने बिलीफ को चेंज करेंगे और अपने चित्त को निर्मल करेंगे। थोड़ा समय बचा है पुरुषार्थ का, मैं भी भविष्यवाणियां सुन लेता हूं आजकल। वैसे तो हमें पता ही है कि 30-32 तक ये खेल पूरा हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर शुरू। लक्षण तो रोज आगे बढ़ते रहते हैं, रोज। मुझे न्यूज सुनने का ये इंटरेस्ट होता है कि महादेव जी कैसे डमरू बजा रहे हैं, थोड़ा पता चलता रहे। इजराइल किससे नहीं डर रहा, छोटा सा देश। उधर रसिया बढ़ाता जा रहा है अपने आक्रमण का दायरा। डर है लोगों को, कभी भी ये विश्व युद्ध में बदल सकता है। बंद तो अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम कर्मातीत नहीं हैं। राज्य स्थापित हो जाए फिर ये काम जोर शोर से चलेगा। और राज्य स्थापित करने के लिए एक रहस्य आपको सुना दूं, किसी ने सुनी हो बाबा की बात अव्यक्त। बाबा मेहनत कर रहे हैं राजा रानी तैयार करने के लिए। जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे, प्रजा तो एक एक दिन में लाखों भाग आएगी। उस समय पर हम पहुंचते जा रहे हैं। राजा रानी है विजय रतन 108। वो प्रिपेयर हो जाएं, अपनी परफेक्ट स्थिति को प्राप्त कर लें, तो प्रजा तो एक एक दिन में भागी चली आएगी। और वो समय अब समीप आता जाता है। इसलिए अपने को स्पिरिचुअल एनर्जी से भरना है। मन अगर ऐसा वैसा रहता है, सबको अनुभव है, हमारी दृष्टि में कुछ भी हो, अवगुणी दृष्टि हो, दूसरों को देखने की दृष्टि ज्यादा हो, तो एकाग्रता तो नष्ट हो जाती है। और अगर स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के बाद एकाग्रता नहीं है, तो ये एक ड्राई फिलोसॉफी रह जाती है हमारे जीवन में, ड्राई। जैसे फिलोसॉफी सब्जेक्ट है ना लौकिक पढ़ाई में, बहुत कम बच्चे लेते हैं, ड्राईनेस है। हमारे यहाँ बाबा ने एक बहुत अच्छी फिलोसॉफी देकर भी हमें प्रैक्टिस में लगा दिया, सुख मिलने लगे। इन सब बातों पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। आप यहाँ आए हैं ज्ञान सरोवर में, ये स्थान बहुत सुंदर है। जैसे मधुबन है, वैसे यहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर हैं। हमें तो आने वाले ही बताते हैं, बहुत लोग एक बात कहते हैं, जब आए भरा हुआ था दिमाग, दबा हुआ था, आधे दिन में ठीक हो गया सब, चित शांत, जैसे तनाव किसी ने खींच लिया हो, ऐसा हो गया है। तो इस सुंदर स्थान का बहुत फायदा उठाना, सवेरे का भी। आजकल बहुत सुंदर माहौल होता है सवेरे, वाइब्रेशंस मोस्ट पावरफुल, प्रकृति का सौंदर्य, पॉल्यूशन फ्री, पूरा फायदा उठाना 3 दिन में इसका। और फायदा उठाने का, कहने का मेरा अर्थ है, अपने भविष्य के लिए एक ऐसा प्लान बना के जाना जो फॉर एवर चले, जिसमें लक्ष्य की हो स्पिरिचुअल एनर्जी से स्वयं को भरना है। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, सर्व खजानों से स्वयं को भरना है। और बाबा का एक बहुत ही गहरा सुंदर महावाक्य था, कभी आगे चलकर, सेवा उनके द्वारा ही होगी जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। दृष्टि से सेवा होगी, थोड़े से बोल से सेवा होगी। जो आजकल योग शिविर में 1.5 घंटा आत्मा का लेसन दिया जाता, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 से 10 मिनट। बहुत ज्यादा सुनाने से लोग कुछ भी नहीं समझते, अगर हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, अगर हमारी स्थिति बहुत सुंदर है, हम उन्हें बताएंगे ना, तुम आत्मा हो, यहाँ ज्योति हो, ऐसी हो वैसी, 5 मिनट में और उन्हें बैठा दो के आत्मा होकर बैठ जाओ, वो अनुभव करने लगेंगे। इसकी जरूरत है और ये सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं यही काम करेंगी। एक महावाक्य और सुना देता हूं, जब वो मैंने मुरली में सुना था व्यक्त में, तो उसका अर्थ पूरा समझ में नहीं आया था, पर मेरे अंदर चला गया था वो। जब तक तुमने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, जब तक तुमने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। तुम्हें सोचता है रहा, कौन से ब्राह्मण पन के कर्तव्य हैं भाई, क्लियर नहीं था बहुत कुछ। बहुत पुरानी बात है ये, 35 से 40 साल वर्ष पुरानी होगी। धीरे धीरे पता चलता रहा, लोग आते रहे उस स्थिति के, मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा सा बताकर, दृष्टि देकर उन्हें मुक्त करना होगा। संसार में टेंशन और भय दिनों दिन बढ़ता जाएगा, भय बहुत बढ़ेगा। हमें थोड़े वचन सुनाकर, दृष्टि देकर, वाइब्रेशंस देकर उन्हें भय से मुक्त करना होगा। विनाश काल में सब जानते हैं क्या क्या होगा, हो रहा है। वाइब्रेशंस देकर अनेक आत्माओं की मदद करनी होगी, और हम में से कुछ आत्माएं, अब आप सोच लो आपको बनना है क्या, मास्टर विश्व रक्षक भी बन जाएंगे। ये स्वमान बाबा ने एक ही बार दिया है, 2-3 ऐसे स्वमान हैं जो रिपीट नहीं हुए, एक एक बार सुनाए बस। तुम जहान के नूर हो, इसको एक्सप्लेन किया था 75 में, फिर ये कभी आता नहीं। तुम मास्टर विश्व रक्षक हो, बहुत अच्छा ये स्वमान है। हमारी प्योरिटी, हमारा योग बल दूसरों के लिए विश्व रक्षक बन जाएगा। कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरों के सिर पे छत्र छाया बन जाएगा। प्योरिटी के लिए एक सुंदर बात आपको सुना देता हूं, सबको उससे बल मिलेगा अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए। चारों कोर से बुद्धि को हटाना है। संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा बहुत गहरी दी है बाबा ने, अव्यक्त मूल्यों में आता है। एक भी व्यर्थ संकल्प न हो, आत्मा श्रेष्ठ स्वमानधारी हो जाए, ये परफेक्ट प्योरिटी कहलाएगी। कुछ साल पहले मुझे भी एक वैज्ञानिक ने ही बताया, नीचे थोड़ी चर्चा थी, उसने बताया कि वैज्ञानिकों को एक काम दिया गया था कि जब ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जैसे अब हुए, तो जो पवित्र स्थान है संसार में वो सेफ रहते हैं। क्यों? तो वैज्ञानिकों का निष्कर्ष था, इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र तरंगे फैलती हैं, वो विनाश की तरंगों को रोक देती हैं, रिपल्सन, गो बैक, और वो सेफ हो जाते हैं। हम अपनी प्योरिटी के महत्व को समझें। जहां एक बहुत अच्छी पवित्र आत्मा होगी, वो स्थान भी तीर्थ होगा, उसके वाइब्रेशंस अनेकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं अभी अभी का अनुभव सुनाऊं आपको अपने सेंटर का, मैं 2-4 बार सुना चुका हूं, मुझे बहुत प्रिय लगता है, बड़ा मोटिवेशनल एक्सपीरियंस है। पठानकोट सेंटर, अभी जब तूफान चल रहे थे ये बहुत ज्यादा, तो ऊपर से एक बड़ा पहाड़ का पीस नीचे गिरने लगा, 25 मकानों को नष्ट करते हुए आ गया और अपने सेंटर को बचाते हुए 2 फुट दूरी पर ठहर गया, उसके आगे नहीं बढ़ा। बस इतनी जगह बची कि बहनों को निकाल दिया गया आराम से, सेंटर का भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो ये है पवित्र वाइब्रेशंस का इन्फ्लुएंस। सभी बढ़ाएंगे अपनी प्योरिटी को। प्योरिटी का डायरेक्ट रिलेशन योग बल से है, स्वमान से है, 500 रूपों के अभ्यास से है। सभी अपनी साधनाओं में इन चार चीजों को स्थान देंगे बहुत ज्यादा, प्लान बनाएंगे। एक 500 रूपों का अभ्यास जिसमें आत्मिक दृष्टि भी आ, वो शरीरीपन भी आ गया, भविष्य का नशा भी, पूज्य स्वरूप का नशा भी, फरिश्ता स्वरूप भी। दूसरा आत्मिक दृष्टि जो बहुत बड़ी चीज है। संसार में आज तक आत्मा का ज्ञान तो था ही नहीं, पर जितना था उसकी किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, वो किताबों में ग्रंथों में रह गया बस, नो प्रैक्टिस। इसलिए वो चीजें इतनी कल्याणकारी सिद्ध नहीं हुई। आत्मिक दृष्टि। तीसरी चीज बहुत अच्छा स्वमान, स्वमानधारी बन जाए हम। चौथा योग अभ्यास बहुत अच्छा, भिन्न भिन्न ड्रिल्स, इनका एक प्लान बनाएं सभी अपने जीवन में। सवेरे उठते ही अगर हम 500 रूपों का अभ्यास करते हैं तो जल्दी सुस्ती थकान सब दूर हो जाती है, नींद का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, योग में एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहां आज ही एक सुंदर संकल्प करें, जब हम इस संसार से जाएं तो भरपूर होकर जाएं, जब हम इस संसार से जाएं तो संसार को देते हुए जाएं। लिया बाबा से है बहुत कुछ, अब देते हुए जाएं। वो ब्राह्मणपन के कर्तव्य हैं देने के, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान भी सबको देना होगा। राह तो दिखाई रहे हैं, ये राह दिखाना वरदान देने में चेंज हो जाएगा आगे चलकर। हमें अनेक विघ्नों में फंसी हुई आत्माओं के विघ्न नष्ट करने होंगे, जो बाबा ने एक बहुत अच्छी सीख दी थी, ग्लोब पर बैठकर सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाकर थोड़ी देर भी यदि संसार को सकास देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। सकास देने का बहुत महत्व अपनी दिनचर्या में, रोज दो बार कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम एक बार 10 मिनट सकास देना। प्रकृति को भी देना है, कमजोर आत्माओं को भी देना है, विघन नष्ट करने के लिए भी देना है, और एक बड़ा काम जो डिमांड के रूप में, संसार की नीड के रूप में हमारे सामने आएगा वो है रात को लोग सोएंगे नहीं। अभी भी कई जगह हो रहा है, रात को भय से सोते हैं, पता नहीं सवेरे उठेंगे या नहीं, कई जगह ऐसा हाल हो गया है। युगांडा का, वो युगांडा नहीं कोई दूसरा देश है, सूडान, वहां का आपने सुना होगा, एक बड़ा गांव पूरा जमीन में चला गया, एक व्यक्ति बचा जो कहीं बाहर था, पूरा का पूरा गांव। हिमाचल आदि में तो गांव के गांव साफ हो गए। मुझे एक बहन ने बताया, परसों ही फोन किया था उसे, मैंने कहा बहन जी क्या हाल है आपके यहाँ, कहा ये टीवी आदि पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, पैनिक हो जाते हैं लोग, भयभीत हो जाते हैं, इतना भयंकर विनाश हुआ है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गांव के गांव, क्योंकि नीचे गांव होते हैं ना, पहाड़ है उसके नीचे हैं, वैली में हैं, इधर उधर हैं, साफ ही हो गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। पंजाब में किसानों का क्या हाल हुआ है, बेचारों की भैंसे पाकिस्तान में चली गई दूध देने के लिए, सुना है ना, भैंसे तैर के पाकिस्तान में चली गई, कहते 5-5 लाख की एक एक भैंस थी। पाकिस्तान वाले बड़े खुश, एक बयान दे रहा था कि काला सोना आया है भारत से पाकिस्तान में। देखो क्या क्या खेल हो रहा है। अब भैंसों को क्या पता बॉर्डर कहाँ है। पानी का बहाव तेज उसमें बहते बहते चली गई। तो ये सब महान कार्य हमें करने होंगे। एक सबसे बड़ा काम, इसमें बहुत बड़ी साइलेंस पावर और प्रकृति के मालिकपन की स्थिति चाहिएगी। जब प्रकृति पूरा संहार करने लगेगी, अभी तो बहुत छोटा नजर आएगा। बाबा ने कहा प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे, उसमें भी अग्नि और पानी फिर भूकंप एक साथ काम करेंगे। तब जिन आत्माओं के पास बहुत साइलेंस पावर होगी, जो प्रकृति के मालिक बन गए होंगे, वो बस संकल्प करेंगे, प्रकृति को संकल्प देंगे शांत, और कुछ ही क्षणों में प्रकृति का प्रकोप शांत होता दिखाई देगा। तो सभी को परमात्म प्यार भरना है अपने अंदर, और परमात्म प्यार तब पैदा होता है किसी के मन में जब उसकी प्राप्तियों का अच्छा अनुभव हो जाए। ठीक बात है ना? प्राप्तियां बहुत होती हैं तो वो मनुष्य भी प्यारा लगता है। भगवान से हमें बहुत प्राप्तियां हो गई, उसकी आप एक लिस्ट लिखें, मैं ये सब काम कर चुका हूं, बहुत मुझे बाबा ने मनन शक्ति के लिए कहा था। तब तो पता नहीं था ये वरदान होते हैं, पीछे पता चला बाबा के मुख से जो निकल गया वो तो वरदान, तो मनन चालू हुआ। तो इस पे भी लिखा बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, 25 बातें लिखी गई। वैसे तो मनुष्य ये कह के छुट्टी पाता है बाबा से सब कुछ मिला, लेकिन तो सब कुछ में क्या क्या, बहुत बड़ी चीज तो हमें ज्ञान दिया उसने, सत्य ज्ञान सरल शब्दों में। अगर आप में से किसी ने सत्य की खोज की हो इस जीवन में, पता लगा होगा कि सारे शास्त्र ग्रंथ वेद सब पढ़कर भी मनुष्य को खोज बनी ही रहती है, फिर भी गाते हैं प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मैं पूछा करता था तो क्या हुआ, पढ़ के अंधकार मिटा नहीं, सत्य की खोज बनी रहती है। बाबा ने एक एक लाइन में हमारी सत्य की खोज समाप्त कर दी। सबसे गुह्य बात जो बताई, क्योंकि हमारे लिए वो सहज हो गई है, इसलिए हमें पता नहीं वो भी कोई गुह्य है, कि आत्माओं का धाम परम धाम है। इस बात की चर्चा कहीं नहीं है, क्योंकि इस बात की जरा भी चर्चा होती तो सर्वव्यापकता का ज्ञान समाप्त हो जाता। कितनी गहरी बातें कही, परम धाम में सभी धर्मों के सेक्शन अलग अलग हैं, ये कोई छोटी फिलोसफी नहीं है, अति गुह्य बात। विदेशी जब हमारे यहाँ आने लगे तो एक ने प्रश्न किया, क्या एक सेक्शन की आत्मा जंप दे के दूसरे में नहीं चल जाती? उनके प्रश्न ऐसे ही होते थे, कुछ गुह्य भी होते थे, नहीं जा सकती, क्योंकि हर धर्म की आत्माओं के संस्कार, उनकी प्योरिटी, उनके वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं, दूसरे के में जा ही नहीं सकती, अट्रैक्शन ही नहीं होगा। ऐसे ही कुछ लोगों ने पूछा, हु डिजाइंड द ब्रेन, ब्रेन किसने डिजाइन किया, किसने बनाया है? ब्रेन की रचना बहुत गहरी है, बहुत गहरी, सारे संसार के मेडिकल साइंटिस्ट भी इसको जान नहीं पाए अब तक क्या है इसमें। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी एक कुछ साल पहले, तो डॉक्टर गिरीश भाई ने मुझे सुनाया कि सबका एक ही मत था कि 10-12% से ब्रेन की नॉलेज ज्यादा है ही नहीं संसार में। तो देखो इतनी बड़ी रिसर्च होने के बाद ये हाल है, इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, किसी को पता नहीं चलता कहाँ से आ रही हैं। मन से बहुत सारी चीजें शुरू हो रही हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों से शुरू हो रहा है। यहाँ भी अगर मेडिकल साइंस पहुंचती तो कुछ और रूप होता उसका। तो हमें ये बड़े बड़े काम करने हैं, परमात्मा से बाबा से मुझे क्या क्या मिला उसकी एक लिस्ट बनाना। मैंने कुछ समय पहले लिखा, कल परसों ही मैंने उसको टाइप कराया। मैं कहता तो बड़ी अच्छी चीज है, मुझे मिल गया कहीं। आओ उसके प्यार में मग्न हो जाएं जिसने। दो बातें बहुत अच्छी बाबा की, जो यहां पर परमात्म प्रेम में मग्न हो जाएंगे उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार प्राप्त होगा। यहाँ का परमात्म प्रेम जन्म जन्म की भाग्य की रेखा खींच देता है। बहुत ध्यान देंगे, जो परमात्म प्रेम में मगन होंगे और जो अपने साथियों को बहुत प्रेम देंगे। प्रेम देने के कई तरीके हैं, इसमें स्थूलता की कोई बात नहीं। दूसरों की बात सुन लेना, उन्हें हल्का कर देना, दूसरों को आगे बढ़ा देना, दूसरों को योग्य बना देना, ये सब प्यार होता है। अब चिंतन करें सभी, हम अपनी स्थिति को इतना सुंदर बनाएं कि भगवान स्वयं हमें प्यार करें। जन्म जन्म हम उसे प्यार करते आए हैं, बिना जाने उसे प्यार करते आए। कहीं श्री कृष्ण के रूप में उसके प्यार में मगन भी रहे, लेकिन अब जब वो हमारे सम्मुख है तो ऐसा कुछ करें कि भगवान के प्यार के अधिकारी बन जाएं। अब रिटर्न देने आया है हमारे प्यार का। किस किसे परमात्मा का बहुत प्यार मिलेगा, ज्ञान की बातें सुनाई अभी, किसे बहुत प्यार मिलेगा? मुरलियों में सब आता है, वे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं जो ओबीडियंट हैं, जो बाबा के कार्यों में लगे रहते हैं, जो बाबा की हर आज्ञा को फॉलो करते हैं, पूरे ओबीडियंट, हर आज्ञा को फॉलो करते हैं, जो उसके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और जो उसके कार्यों में विघ्न डालते हैं, सोच ले उनके साथ क्या होगा। हम विघ्न डालने वाले नहीं, हम तो उसके कार्यों को फलीभूत करने वाले, उसके भंडारों को भरपूर करने वाले हैं। क्या है हमारे अंदर सच्चाई? बाबा को बहुत प्रिय है। संसार में तो सच्चाई प्रिय नहीं है किसी को। यहाँ तो जो चालाक लोग हैं वो आगे रहते हैं, है या नहीं? इवन हमारे ब्राह्मण परिवार में भी जो तेज तराक हैं वो आगे हैं, जो जेंटिल हैं उन्हें कोई पूछता ही नहीं बेचारों को। लेकिन हमें बाबा से सच्चाई से रहना है। सच्चाई केवल इसे नहीं कहते कि सच बता दें, गलती करते रहें और बाबा को सच बताते रहें, ये तो बहुत छोटा स्वरूप है। हृदय सत्य हो जाए, विचार सत्य पे आधारित हो जाए, कारोबार में सत्यता ईमानदारी चलने लगे, इसकी बहुत जरूरत होती है। तो हम अपने योग को भी बहुत बढ़ाएंगे। बाबा का सूक्ष्म प्यार हमें तब बहुत अच्छा अनुभव होता है जब चित्त एकाग्र हो जाए, है या नहीं? एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाए तो प्यार से भी बड़ी चीज गहन शांति और परमानंद, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, उनकी हमें अनुभूति होती रहती है। मैं आपको स्वमान पर कुछ बातें अवश्य कहूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा इस जीवन में। प्रारंभ से ही मुझे पकड़ हो गई थी इन बातों की। स्वमान की बात बहुत अच्छी लगी थी। साकार मुरली में तो स्वमान की चर्चा मिनिमम है, अव्यक्त होते ही बाबा ने कुछ कुछ स्वमान की बातें याद दिलानी शुरू की। एक बहुत अच्छा महावाक्य 74 में सुना, जब तुम स्वमान का स्वरूप बन जाओगे तब संपूर्णता आ जाएगी। मेरे लिए बहुत प्रेरक चीज थी ये, स्वमान का स्वरूप बनना। दूसरी बार कहा, स्वमान का अर्थ है अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना, अपनी इनर पावर्स को समझना, और जो स्वमान बाबा दे रहे हैं उसको स्वीकार कर लेना। देखो तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मुरली में आज भी था, आप सब ने ध्यान दिया हो, आधार हो तुम, आया याद? हम आधार हैं इस सृष्टि के, इस कल्प वृक्ष के आधार हैं, युग परिवर्तन के आधार हैं। क्या हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? पूछेंगे अपने से, कितना बड़ा काम दिया है बाबा ने, तुम विश्व कल्याणकारी हो। क्या हमें याद रहता है हम विश्व का कल्याण करने वाले हैं, या अपने ही उथल पुथल में, माया से युद्ध में, संघर्षों में हमारा समय गुजर रहा है? सब चेक करेंगे अपने को। ये बड़ी जिम्मेदारियां हमारी हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात रियलाइज कराई थी, मैंने उसको इस तरह लिया था, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। एक बार कहा जड़ें हो, और बहुत बार तो ये कहा ही है, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो। बहुत गहरी बात थी, तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष पर पड़ता है। मेरे लिए बहुत बहुत सुंदर बात थी, हमारे व्यर्थ का भी पड़ेगा और समर्थ और पॉजिटिव महान संकल्पों का भी पड़ेगा, हमारी प्योरिटी का सीधा प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष पे जाता है। स्वमान की बात पे आएंगे, मैं आप सबको याद दिलाऊं, हम सभी को इस संसार को बदलना है प्योरिटी और योग के बल से। ये बात हम याद रख के अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाते चलें, स्वप्नों तक भी स्वच्छ हो जाएं हम, निर्मलता आ जाए पूरी तरह। मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जब से मेरे पास तो प्योरिटी बहुत अच्छी थी इस जीवन में, मुझे कोई ज्यादा मेहनत कुछ भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े प्योरिटी की सूक्ष्मता, इम्प्योरिटी की सूक्ष्मता समझ में आती रही। 82 की बात है, 1982, हम लोग यज्ञ में हर वर्ष को एक नाम दिया करते थे, ये प्रत्यक्षता वर्ष, ये तपस्या वर्ष, ये अव्यक्त वर्ष, ये गीता ज्ञान देने का वर्ष, ऐसे। तो मैंने पर्सनली उस 82 को बिताया पवित्रता का वर्ष। तो शुरू में ही बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी गाइडिंग लाइन आ गई, तुम ये सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, पर नहीं, ये सोचो मैं परम पवित्र हूं। एक नई रोशनी, मैं परम पवित्र हूं। तुम ये सोचते हो बाप समान बनना है, मंजिल बहुत लंबी दिखाई देती है, ये मान लो मैं बाप समान हूं, तो मुझे एक बाप की तरह सबको पालना देनी है, मुझे एक बाप की तरह सबको प्यार देना है, मुझे बाप की तरह तपस्या करनी है, ब्रह्मा बाबा की तरह। चिंतन को ऐसा मोड़ दो। तो स्वमान की बात मैं इस पर आपको ले जाता हूं थोड़ा सा, इस पर आप बहुत ध्यान देंगे और बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे अपने पुरुषार्थ में। पहला स्वमान बाबा ने हमें दिया, तुम महान आत्मा हो। अब इसको हम स्वीकार करें, ये सत्य है कि मैं महान हूं। और अगर आप एक 21 दिन का टाइम दे दो अपने को, 10 मिनट रोज, एनी टाइम इन द डे 10 मिनट लिख कर अभ्यास करो, मैं एक महान आत्मा हूं, आपने लिख दिया। अब इसको अंदर भेजना आपको, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर ले कि यही सत्य है, तुम महान हो। तो तुम्हें ये कर्म नहीं करने हैं, तुम महान हो, तुम्हें नहीं सोचना है, तुम महान हो, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस तरह लिखेंगे, मैंने 21 जन्म देव कुल में लिए, सचमुच मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, भगवान ने मुझे टाइटल दिया तुम महान हो, ये परम सत्य है। स्वीकार करें, मैं महान हूं, महान कर्तव्य दिए हैं उसने, इसलिए मैं महान हूं। तो महानताएं आने लगेंगी, इसका नशा चढ़ने लगेगा। ऐसे 10 स्वमान लेकर 10 मिनट में लिखें उन्हें, और एक एक को अंदर भेजें, एक्सेप्ट कराएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तुम महान हो। संगठनों में टकराव बहुत हो जाता है, किसी किसी में टकराव का कारण ईगो होता है। सभी भाई बहनों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में, श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ईगो को पहचानना और उसे समाप्त करना, ये एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी ईगोइस्टिक पर्सन कहीं भी प्रिय नहीं होता है, कहीं भी प्रिय नहीं होता है। वो टकराव का कारण यही होता है, आई एम राइट, मैं ही राइट हूं। कई तो ये भी सोचते हैं, बुद्धिमान केवल मैं हूं, बाकी कोई नहीं। ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं, बुद्धिमान केवल मैं हूं, बाकी कोई नहीं। एक बहन पूना से आती है, मैंने कहा था मैं तुम्हारा अनुभव सुना दूं, कहा सुनाया करो। कहा मैं पढ़ती थी 12वीं क्लास में, पहले 10 में मेरा नंबर आया, मुझे बहुत अहंकार रहने लगा, मैं ही बुद्धिमान हूं। परिवार वाले भी तंग हो गए मेरे इस विचार से, माँ बाप ने सोचा जल्दी इसकी शादी कर दो, शादी कर दी। वहां गई तो मैं ही बुद्धिमान हूं, टकराव होने लगा। कुछ साल के बाद पति ने हाथ जोड़ा, 50 लाख का चेक देता हूं, अपने घर जाके आराम से रहो। कहा मैं आ गई घर, फिर वो माँ बाप और बूढ़े हो गए थे, फिर वही संकल्प, मैं बुद्धिमान हूं बहुत। तो कहा एक संकल्प ने मुझे कहीं ठहरने नहीं दिया, स्थिर नहीं होने दिया, एक संकल्प। इस ईगो को हमें पहचानना है, और ईगो के लिए सबसे अच्छी दवाई है ही स्वमान। जो जितना स्वमान में रहेंगे अभिमान नष्ट होगा। बहुत आत्माओं को तो पता नहीं चलता उनमें अभिमान कहाँ है। अभिमान का सूक्ष्म रूप होता है मैं, जिसमें बाबा की बहुत मूल्यां चलती हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो अपने को स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस मैं पर काम करें बहुत अच्छी तरह। आपको याद हो अव्यक्त बाबा आए हुए थे नीचे, दो बातें सुना देता हूं, एक अभ्यास की एक धारणाओं की। अव्यक्त बाबा ने कहा वतन में, गुलजार दादी, गुलजार बच्ची कहा जिसके तन में बैठे उसको ही कहा, और प्रकाशमणि दादी दोनों इमर्ज हुए। और बाबा ने दोनों को कहा, गुलजार दादी को कहा, बच्ची तुमने बहुत बड़ा काम किया है, बाप दादा को संभाला, इतने जन्म अपने तन में एकोमोडेट किया। दादी को कहा, इतने समय से तुमने यज्ञ को संभाला है, ब्रह्मा बाबा 33 साल रहे यज्ञ में, तुमने तो 50 साल संभाल दिया यज्ञ को। तो दोनों कह रही थी, नहीं बाबा हमने नहीं आपने, हमने नहीं आपने। गीत गूंजने लगा ये वतन में, एक बार बाबा ने सुनाया। दूसरी बार का बहुत अच्छा अनुभव आप सब प्रैक्टिस करेंगे उसकी। वो भी बाबा नीचे आए हुए थे और बाबा सुना रहे थे, आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, तीन फरिश्ते प्रकट हुए, एक मामा थी, दो के नाम और दिए कि गुलजार बच्ची और एक और पता नहीं प्रकाशमणि दादी कहा या क्या। और बाबा ने क्या किया, रंग बिरंगे हीरे हाथ में लिए, पाउडर बना दिया, तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ये है तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप, इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत आनंदकारी प्रैक्टिस है। पल भर में अभ्यास करेंगे, मैं वतन में बाबा के साथ हूँ, बाबा ने थीरो का पाउडर छिड़क दिया और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी हैं, बहुत आनंद आएगा। तो अपने योग अभ्यास में ऐसी एंटरटेनिंग प्रैक्टिस ऑफ योगा जिनमें मनोरंजन हो, जो मन को बोर न करे, ऐसी कुछ बातें सीख लेना सभी, और अच्छी प्रैक्टिस करनी है योग की। सारे कार्य योग बल से ही सफल होते हैं, आपको अनुभव होता होगा जो कार्य आप करते हैं, चाहे अकाउंट का चाहे और। जब मनोस्थिति बहुत अच्छी है तो गलती होगी नहीं, बाबा के तो ये महावाक्य हैं, स्थिति बहुत अच्छी है तो घंटे का काम 40 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। बाबा का एक महावाक्य और सुना दो जिसका अर्थ अति गुह्य है, अभी तक भी समझ से परे मेरी भी, आप भी सोच लेना। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित होते हैं वे एक मास का काम एक घंटे में कर सकते हैं, यानी एक दिन का काम दो मिनट में, सोच लो। ये जो स्पीड है ये शिव बाबा की है, ऊपर अब ब्रह्मा बाबा की भी है, दोनों परफेक्ट हैं। ये हमारी स्थिति बाबा बनवाना चाहते हैं, ताकि हर काम संकल्प से होता रहे, बस संकल्प किया और काम हुआ, संकल्प किया और उधर काम किया उन्होंने, संकल्प किया विघ्न नष्ट हुए। ये जो परफेक्ट आत्माओं की सिद्धि होती है वो बाबा हमें देना चाहते हैं, वहां तक ले जाना चाहते हैं। तो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी भरने के लिए योग पर बहुत ध्यान देंगे। कितना होना चाहिए रोज योग? 8 तो मुरलियों में है, कितना होना चाहिए प्रैक्टिकल वो बताओ। 4 तो होना ही चाहिए, 4 से कम में तो हमारा काम नहीं चलेगा। कुछ बैठकर, कुछ कर्म में, बैठना जितना जिसको संभव हो, 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो अपनी दिनचर्या अनुसार जितना बैठें। और बैठने में शुरुआत करेंगे 5 स्वरूपों के अभ्यास से, तो एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। आप 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार कर लो शुरू में ही, पहले 1 मिनट में, दूसरी बार 3 मिनट में, तीसरी बार 5 मिनट में, 8-10 सेकंड देंगे ऐसे, बहुत सुंदर योग लगेगा। बाकी एक सिंपल विधि है, आपको जरूर पसंद आएगी। जितने तरह के कार्य आपको करने हैं सारे दिन में, लगभग वो फिक्स ही होते हैं, रोज हमें करने होते हैं, रोज तो हर एक के काम बदलते नहीं, बदलेगा भी तो 1-2 काम बदलेगा। लिस्ट बनाना उसकी। देखो मैंने जब ये पुरस्कार किया, बहुत साल पहले की बात है, मैंने अपने कार्यों की 35 की लिस्ट बना दी, 6 छोटे काम भी, 6 छोटे। तब हम रोज कोई क्लास नहीं कराते थे, क्लास तो कभी 15 दिन में एक बार मिल गया। छोटे छोटे काम क्या होते हैं, पानी पीना, मैंने अपने स्नान के टाइम को भी 3 भागों में बांट लिया था, ब्रश करना, सेविंग करना, फिर स्नान करना। तीनों में अलग अलग अभ्यास। मुझे याद रहता है ब्रश करते हुए मैं एक महान आत्मा हूं, तीन बार याद करना है। स्नान करने के समय की बाबा ने विधि बताई थी, मैं इस देह में इस देव देवी हूं, ये देह मेरा मंदिर है, तो चार बार याद कर लें। पानी पीते हुए मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, दो तीन बार याद कर लें। ऐसे अलग अलग कर्मों में अलग अलग अभ्यास फिक्स कर लो। खाना जिनको बनाना हो बनाने में यह अभ्यास करेंगे, चाय बनानी हो चाय बनाने में यह अभ्यास करेंगे, खाना खाने में यह अभ्यास करेंगे। अकाउंट का काम आपको करना हो, बुद्धि बहुत लग जाती है, उसमें भी कुछ फिक्स किया जा सकता है। बाबा को बुलाएंगे, बैठो आप यहाँ हमारे साथ, बीच बीच में एक दो बार याद कर लेंगे, बाबा बैठा है। ऐसे ये कर्म योग का सबसे सरल अभ्यास है, इसको सभी करेंगे तो तीन चार पांच दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। पानी गिलास में आए हाथ में आएगा तो याद आएगा मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बाइक पे जाना है, कार से जाना है, बैठते ही यह अभ्यास करेंगे। फिक्स करो कम से कम 10 12 15 16 कामों की लिस्ट बना लेना। बोलो पसंद है, पसंद है। बहुत सरल विधि, किसी कर्म में अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। किसी कर्म में जैसे बाइक पे बैठ रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, बाबा का आह्वान आ जाओ, इतना ही काफी होता है। किसी कर्म में जब आप थोड़े हल्के हैं, हल्का कर्म है, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये अभ्यास कर लेंगे। कभी बाबा की परम धाम से किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, कभी मैं परम पवित्र आत्मा हूं, स्वमान ले ले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसा अपना स्वयं का स्वयं प्लान बनाएं। चेंज करते रह सकते हैं उनको, कुछ चीजें बोर कर देती है रोज रोज अभ्यास करने से। स्वमान कोई पांच चुन लो, उनको चेंज करते रहो हर हफ्ते में। तो जब हमारी स्थिति बहुत एकाग्र होगी, और इससे बहुत फायदे होंगे, कर्म जो आप करेंगे वो आपको थकाएगा नहीं, आपको यह आभास होगा हमने कुछ नहीं किया सारा दिन, बिल्कुल लाइट टायरलेस स्थिति, और काम में कोई गलती नहीं हुई, कोई उलझन नहीं हुई, कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई जिसमें मन टेंस हो जाए, तो इस तरह सबको अपनी स्थिति अच्छी बनानी है। प्यार तो हमें बहुत बांटना है संसार को। लास्ट लाइन बोल देता हूं, बाबा ने कहा था, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की है वैसे ही तुम भी दूसरों की पालना करो। प्यार बांटने की भी, शक्तियां बांटने की भी, शांति देने की भी, आगे बढ़ाने की, योग बनाने की, मोटिवेट करने की, ये सब पालना होती हैं, ये हमें करना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।